الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ راتیں بہت ہی قیمتی راتیں ہیں. امام ابن تیمیہ سے جب پوچھا گیا کہ عشرہ ذوالحجہ زیادہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ، تو انہوں نے فرمایا عشرہ ذوالحجہ کے دن رمضان کے آخری عشرے سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں عشرہ ذوالحجہ کی راتوں سے افضل ہیں. یعنی اس عشرے میں بھی جو راتیں ہیں وہ بہت قیمتی ہیں. ہم سوچتے ہیں نا کہ شاید اس عشرے میں تاک راتیں ہی ہیں جو صرف بڑی ویلیوبل ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں. بے شک ان کے اندر تو لیلت القدر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جیسے ذوالحج کے پہلے 10 دن پورے سال میں بیسٹ دن ہیں، اسی طرح راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی یہ 10 راتیں ہیں جو بیسٹ راتیں ہیں پورے سال میں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بڑی شان والی راتیں چل رہی ہیں. اور پتہ نہیں اگلے سال اگلے رمضان میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نہیں ہوں گے. آخر کوئی ایک رمضان تو آخری رمضان ہی ہوگا. آپ دیکھیں پچھلے رمضان میں لاکھوں لوگ زمین کے اوپر تھے، اور اب وہ زمین کے نیچے ہیں. اگر ان سے جا کے پوچھیں آپ کہ تم کیا چاہتے ہو، تو وہ یہی کہیں گے کاش ایک اور سجدہ نصیب ہو جائے، کاش ایک اور استغفار کر لیں، کاش تھوڑا سا ذکر کر لیں. تو اس سے پہلے کہ یہ حسرتیں ہوں، ہم جو وقت ہمارے پاس ہے اس کو قیمتی جانیں، خاص طور پہ ان شان والی راتوں کو، اپنی راتوں کو آباد کر لیں. سارا سال سوتے ہی رہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی جاب کرتا ہے تو ظاہر ہے اتنا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم تاک راتوں کے لیے چھٹی لے لیں اگر پاسبل ہو، کیونکہ قیمتی ٹائم ہے نا. امام زہری فرماتے ہیں رمضان میں کہی گئی 1 سبحان اللہ غیر رمضان میں کہی گئی 1000 سبحان اللہ سے بہتر ہے. اللہ اکبر، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس ٹائم کی، اور یہ ٹائم بھاگے چلا جا رہا ہے. ہمیں ان راتوں کا فائدہ اٹھانا ہے. کب سے؟ مغرب سے یہ راتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ نہ کریں کہ سارا کام کر کے میں وضو کر کے مصلے پہ آرام سے بیٹھوں گی پھر کچھ پڑھنا شروع کروں گی، نہیں، مغرب کے بعد سے ہی دعائیں کریں، اذکار زبان پہ جاری رکھیں. کوئی پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی مل جائے اور ہمارا بیڑا پار لگ جائے. بعض لوگ ان راتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس جاگنے کا کمپٹیشن ہے کہ کون جاگ سکا اور کہ کون سو گیا. حالانکہ یہ جاگنے کا مقابلہ نہیں ہو رہا، یہ عبادت کی راتیں ہیں. لیکن جب ہمارا کانسیپٹ صرف جاگنا ہوتا ہے نا، تو بس پھر ہم جاگتے ہی ہیں، چاہے اس جاگنے میں ہم گپ شپ کر رہے ہیں، چاہے ہم ٹی وی کھول کے اس کے آگے بیٹھ کے کچھ مذہبی پروگرام دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم فون پہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو بس ہم جاگے ہوئے ہیں نا. تو بس جاگے ہوئے ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھنا کہ جاگا کون ہے. ایسی بات نہیں ہے، عبادت وہ ہے مقصد. عبادت ہو نہیں رہی اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں ٹائم ہم گزارتے رہتے، گھڑی دیکھتے رہتے کتنی رات رہ گئی ہے. تو یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس سے تو بہتر پھر وہ بندہ ہے جو تھوڑی دیر سو گیا پھر اٹھ کے اس نے وہ والے ٹائم میں عبادت کر لی جو اصل قبولیت کا وقت ہے. तो इन रातों के औकात को जाया ना करिए। हदीस बहुत ही डरा देने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से रात में कयाम करने वाले ऐसे हैं कि उनको रत जगे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत से सिर्फ जागते ही हैं, सवाब कुछ नहीं मिलता उनको। तो इन रातों में इबादत, अल्लाह ताला के आगे गिरियाउजारी, अल्लाह ताला से बात करना, तन्हाई, ये मुयस्सर आम दिनों में नहीं आती। तो इतनी ब्लेस्ड रातें हैं, इनका फायदा उठाइए। जुरार बिन जुमैरा फरमाते हैं हज़रत अली कि वो आवाज़ आज भी मेरे कान सुन रहे हैं कि जब रात भीग जाती थी और सितारे फीके पड़ के मांद हो जाते थे, और वो अपनी मस्जिद की मेहराब में खड़े अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए तड़प रहे होते थे, जैसे सांप का डसा तड़पता है, जैसे कोई गमों का मारा हुआ होता है, और फरमा रहे होते थे मेरे अल्लाह मेरे पास सफर का सामान कम है और सफर बड़ा ही लंबा है, मेरे पास सफर का तोशा कोई नहीं और सफर बड़ा लंबा है। सोचने की बात है, मेरे और आपके पास क्या है? सफर का सामान तैयार है? क्योंकि सफर तो बड़ा लंबा है, तो फिर कब करेंगे तैयारी? लिहाजा ये वो रातें हैं कि जिसमें अल्लाह ताला को रो रो के पुकारना है, तड़प के पुकारना है, दुआएं करनी है। इन्हीं में से कोई एक रात है जिसमें अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारना, उतरने का हुक्म देना है फरिश्तों की फौजों के साथ, जाओ गली गली जाओ, एक एक मोहल्ले में जाओ, एक एक घर में चक्कर लगा के देखो मेरा कौन सा बंदा है जो कुछ मांग रहा है, मेरा कौन सा बंदा है जो तड़प रहा है, किसके आंसू बह रहे हैं, किसकी सिसकियां निकल रही हैं, किसका जिगर फट रहा है, किसकी आहें और किसकी फरियादें हैं मुझसे। और जूं जूं रात ढलती जाती है, अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी रहमत जोश में आती जाती, और जो आखिरी तहाई रात रह जाती है उसमें तो उसकी रहमत का आलम यह है कि वो खुद आसमाने दुनिया पे नजूल फरमा देता है, खुद पुकार के कहता है कोई है जो मुझसे मगफिरत मांगे तो मैं उसको माफ कर दूं, कोई है जो मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उसको अता करूं। तो हम ये कहते हैं अल्लाह ताला तो हमारे साथ अदल का मामला ना करना, क्योंकि अदल किया तो हम मारे जाएंगे, इसलिए कि हमारे पास क्या है, अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार, और जवाब में क्या है, नाफरमानियां, गफलतें, भूल, गुनाह, कुछ भी नहीं है। तो तू अल्लाह अदल ना करना हमारे साथ, हमारे साथ बस रहम का मामला करना, तरस खा लेना, क्योंकि अदल किया तो फिर तो जहन्नुम में जाने से हमें कोई चीज नहीं रोक सकती। लिहाजा हम अल्लाह ताला से रहम मांगे, रहम अल्लाह ताला से हम ये मांगे कि वो हमें बस ऐसे ही माफ कर दे, ऐसे ही जाने दे, हमें पूछे ना, बस पूछ लिया तो हम गए क्यों ये किया था, तो फिर तो हमारा कुछ नहीं बन सकता। लिहाजा अल्लाह ताला से बख्शिश मांगिए, जिसकी बख्शिश हो गई इस रमजान के खत्म होने से पहले पहले, वो जीत गया, वो बाजी जीत गया, और जिसकी बख्शिश ना हुई वो हार गया। हारने वालों में से नहीं होना, जीतने वालों में से होना, कैसे भी करना है अपने रब को मनाना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अस्माए हुस्ना में से अल्लाह ताला का एक नाम। से पहले हम आयत सुनते हैं।
हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला
आज इस नाम को हम समझने के लिए जा रहे हैं, वो अल्लाह ताला का नाम है अर रकीब। रकीब रौकौफ बै से बड़ा निगेबान, बड़ा निगेबान। वो ज़ात जो दिलों में छुपे हुए ख्यालात से भी बाखबर है और जो हर अमल की हर वक्त निगरानी रखता है। एक लम्हा भी वो किसी से गाफिल नहीं है, उसको कहते हैं और रकीब। बात चाहे खुली हो चाहे छुपी हो, वो उसके सामने है। वो हर वक्त देख रहा है, हर वक्त जानता है, हर वक्त मखलूक की हिफाजत करता है और मखलूक के निज़ाम को बेहतरीन तरीके के साथ, अच्छी तदबीर के साथ चलाने वाला है। ये होता है और रकीब। यानी हम तो सिर्फ सोचते हैं ना कि अल्लाह ताला जाहिर व बातिन को जानता है, बस इतनी बात कह दी। हम भूल जाते हैं कि बातिन में नियतें भी होती हैं, नियतें भी शामिल हैं। वो उन नियतों को भी जानता है। और नियत का सवाल जहाँ आता है तो इंसान बाज़ दफ़ा खुद को भी धोखा दे देता है और कहता है मेरी तो नियत बड़ी अच्छी है, मेरी तो नियत अल्लाह की खातिर है। हालांकि जो नियत के खोट हैं वो उसके सामने हैं। नियतों के अंदर क्या छुपा हुआ है वो उसको इल्म है। किस अमल के पीछे, चाहे वो कोई नेकी का अमल ही क्यों ना, उसके पीछे कौन सी खोटी नियत है उसको वो पता है। और चाहे कोई दुनियावी सा अमल है लेकिन उसके पीछे कौन सी नेक नियत है वो उसको भी जानता है। वो देख रहा है मुझे और आपको दिन और रात, हम उसकी नजरों में। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला देख रहा है, सब जानते हैं ना, हमारा सबका ईमान है। लेकिन फिर भी सोचें, हम गुनाह किए चले जाते हैं। वो देख रहा है, हमें पता है, फिर भी हम रुकते नहीं हैं। आप अपने बच्चे को शरारत करते हुए देखें, वो कोई चीज़ गिरा रहा है और आप कहते हैं नहीं करो, नहीं नहीं नहीं, मगर वो करता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं है। उसके बाद हमारा गुस्से से क्या हाल होता है। वो इग्नोर कर रहा है, आप बोलते जा रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है जैसे उसने सुना ही नहीं। हम अल्लाह ताला के बातों को, उसके हुक्मों को इस तरह इग्नोर कर देते हैं कि जैसे हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना किया हो। और हमें ये भी पता है वो देख रहा है हमें, फिर भी हम करते ही चले जाते, करते ही चले जाते, रुकते ही नहीं हैं। और अपना हाल देखें कि हमारा अपना बच्चा ऐसा करे तो फिर उसके बाद हम क्या करते। और अल्लाह ताला का कितना हिल्म है, कितना उसका सब्र है कि वो पकड़ता नहीं है। तो वो अर रकीब है। इस नाम के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। अगर हम इस नाम को समझ लेंगे ना तो ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। गोल हमारा यही होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नज़रों के एहसास को साथ लेके ज़िंदगी गुजारें, कि वो निगेबान है, वो सब कुछ जानता है, जो अंदर भी है और जो बाहर भी है। देखिए, आपने देखा होगा समंदर में आबादी आपको पता है कितनी है। दुनिया की जो 80% आबादी है वो समंदर के नीचे है, 20% है जो सिर्फ ऊपर है। ऐसा ही है ना, तो बहुत कम है जो हमें नजर आ रही है ऊपर है, और बहुत ज्यादा है जो समुंदर के पानी के नीचे है। अच्छा, फिर इसी तरह ये एक मिसाल है कि इसी तरह हमारी जिंदगियां, हमारी ज्यादा लाइफ छुपी हुई होती है लोगों से, कम लाइफ जो होती है वो किसी के सामने होती है। यानी 80% समझ लें हमारी छुपी हुई जिंदगी, और सिर्फ एक थोड़ा सा टाइम के लिए, चंद घंटे के लिए हम किसी के सामने होते हैं, और उसमें हम इतने अच्छे बने होते हैं, इतने प्यारे, इतने मीठे, इतने नाइस, बहुत बहुत ही अखलाक वाले। 2-3 घंटे किसी के सामने अच्छा अखलाक दिखाते हैं, बाकी 21 आवर्स हम क्या कर रहे होते हैं ये लोग नहीं जानते, मगर अल्लाह जानता। 80% टाइम जो लोगों से छुपा होता है ना, वो रब की नजरों में है। जरूरत इस बात की है कि हम उस 80% टाइम को खूबसूरत बनाएं, ये सोच के कि मेरा वो 20% टाइम तो सिर्फ लोग देखते हैं, मेरा 80% टाइम तो मेरा अल्लाह देखता है। तो इसलिए जब अल्लाह ताला की नजरों का एहसास होगा ना, मैं उसे छुप नहीं सकती, वो दिलों के भेदों को भी जानता है, आंखों के इशारों को भी जानता है, वो मेरे सारे उमूर की निगरानी कर रहा है। निगरानी सिर्फ देख नहीं रहा, एक हमारा भी देखना होता है, सोचें कहीं, नजरें कहीं, पता ही नहीं होता क्या देख रही हूं। बाद में कोई पूछे तो फिर हमें याद ही नहीं होता, इसलिए कि हमने गौर ही नहीं किया, लेकिन वो निगरानी कर रहा है। बंदों का अमल कोई खैर का हो या शर का हो, कोई उसके इल्म से बाहर नहीं है। तो उसकी निगरानी ऐसी नहीं है जैसे कि हमारी दुनिया के अंदर क्या होते, कई जगहों के ऊपर कैमरास लगे होते और वो कैमरे से सर्वेलेंस कर रहे होते। हमारे मुल्कों में अक्सर वहां पे उन्होंने बोर्ड लगाया होता है, उस पर लिखा होता है, खबरदार कैमरे की आंख देख रही है। और इंसान ना संभल जाता है, अच्छा कैमरा में मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, हालांकि ये तो एक कैमरा है, जिसके पीछे चले जाएं तो कैमरे में आएगा ही नहीं, इसकी तार काट दें तो वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। जबकि अल्लाह ताला किस तरह की सर्वेलेंस करता है, किस तरह वॉच करता है, इन्ना अल्लाह कैना अलैकुम रकीबा, अल्लाह ताला तुम पे रकीब है, निगेबान है, आप कहीं पे भी हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, आपके बच्चे आप कमरों में हैं, या आपके शौहर दफ्तर में हैं, या आपके वालदैन सात समुंदर पार बैठे हुए हैं, या कोई समुंदर की गहराइयों में है, या कोई टूटी हुई कश्ती में तन्हा रात के अंधेरे में सफर कर रहा है, या कोई जहाज में है, खलाओं के अंदर है, या कोई जेल की काल कोठड़ी में बंद है, तो सबके ऊपर रकीब है, सबके ऊपर। अब कोई तो ये नाम सुन के बड़ा खुश होगा कि शुक्र है अल्लाह रकीब है, तो मेरी तो सारी नेकियों को वो देख रहा है फिर, और कोई परेशान हो जाएगा कि अच्छा जो मैंने कल किया था वो भी अल्लाह को पता है, वो जो मेरे दिल में ख्याल आते हैं उनको भी वो जानता है। किसी को तसल्ली होती है इस नाम से कि देखें बाज दफा इंसान मजलूम होता है, लेकिन उसको लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि जी मेरा कसूर नहीं है, ये जो आपको नजर आ रहा है ऐसा नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। लोग कोई उसकी बात को अहमियत ही नहीं देते, कोई उस पर यकीन ही नहीं करता, वो बेचारा इतना कन्विंस करता है मेरा ये मतलब नहीं, या मैंने ये नहीं बोला, या मैं ऐसा नहीं करती, ये मेरे पर झूठा इल्जाम है। वो कितना भी कन्विंस करता रहे, लोग उसकी बात ही नहीं समझ पाते, उसको अल्फाज नहीं आते एक्सप्लेन करने के। अल्लाह ताला के लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि वो खुद अर-रकीब है, खुद सुपरवाइज कर रहा है, उसके सामने कोई सफाइयां देने की जरूरत नहीं कि ऐसे हो गया था, वो हो गया था, इसलिए आप बात को समझें, मेरा नहीं कसूर, नहीं, कुछ भी नहीं कहने की जरूरत है, हमें कन्विंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद जानता है सारी सिचुएशन को। कुरान पाक में 3 जगह पे इससे रिलेटेड नाम आया और अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा अन अल्लाह यालम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ताला जानता है वो सब कुछ जो आसमानों में और जो जमीन में है, वो सब अल्लाह के इल्म में। सूरह मुजादिला में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि कोई सरगोशी भी करता है ना तो तीन करती है तो चौथा अल्लाह होता है, पांच सरगोशी करती हैं कानों में बातें कर रहे हैं तो उनको नहीं ये याद रहता कि छठा अल्लाह है। और इससे कम और ज्यादा भी हुआ माहुम अइनमा कानू, वो उनके साथ होता है जहां कहीं वो होते। साथ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला फिजिकली साथ होता है, साथ का मतलब ये है कि अल्लाह अपने इल्म के लिहाज से, अपनी कुदरत के लिहाज से, अपने बाखबर होने के लिहाज से साथ होता है। इंसान जहां कहीं भी चला जाए, हुआ माकुम अइनमा कुंतुम, इंसान ये बात को याद रखे वो मेरे साथ है मैं जहां कहीं पे भी हूं। अब देखिए ना ये बात किसी को तो कपकपा देगी, अच्छा अल्लाह मेरे साथ है, और किसी को और दलेर कर देगी कि मेरा अल्लाह जो मेरे साथ है तो डिपेंड करता है ना आप क्या काम करते हैं, आप कैसे अमाल कर रहे हैं। किसी के लिए तसल्ली होगा, तशफी होगा, खुशी की बात होगी, हुआ माकुम अइनमा कुंतुम, किसी के लिए डराने की बात होगी। और कयामत के दिन फिर वो कहेगा, वो याद है वो महीना वो साल वो दिन, ये डेट थी, ये टाइम था, रात का वक्त था, तुमने फलां से ये फलां बात कही थी। आप खुद बताएं परसों रात सोने से पहले आपने आखिरी बात क्या कही थी। मेरा नहीं ख्याल कोई भी इसका जवाब दे सकेगा, हालांकि हमसे हमारा ही अमल पूछा जा रहा है, कोई किसी और का थोड़ी पूछा जा रहा है, कोई गैब की बात नहीं पूछी जा रही, लेकिन हमें याद ही नहीं होता। लेकिन उस निगरान को सब पता है, आइंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु, उसके पास गैब की चाबियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, अनसीन को वो जानता है क्योंकि वो रकीब है, हर दरख्त पे जो पत्ता है वो उसकी निगरानी कर रहा है। अफ्रीका के किसी जंगल में एक दरख्त है जिससे एक पत्ता लटका हुआ ना, अगले सेकंड वो गिर जाने वाला है, अल्लाह को पता है उसने किस सेकंड में गिरना है, किस स्पीड से जमीन पे आना है और कहाँ पे उसकी जगह होगी जिधर वो आके पड़ेगा, जिधर वो जमीन को टच करेगा। काली रात में काली चींटी काले पत्थर पे चल रही है, उस चींटी के चलने की आवाज को भी सुनता है। अब आप कहेंगे उसकी आवाज कहाँ होती है, हाँ लेकिन फरमाया वो उसकी आवाज को भी सुनता है, उस चींटी की नन्ही सी जो टांगे हैं वो चल रही है ना, उससे जो आवाज है अंधेरी रात में काले पत्थर पे कहाँ चींटी नजर आएगी, और चलती भी और उसकी आवाज किधर आएगी, चींटी की भी कभी आवाज होती है चलने की, नहीं वो उसको भी सुनता है। यालम खाइनतल आयुनी वमा तुख्फिस सुदूर, वो आंखों की खयानतों को जानता है, जो कुछ दिलों में छुपा हुआ सीनों के अंदर है वो उनको भी जानता है, ये बानी करता है। आंख की खयानत को कोई जान नहीं सकता, इब्ने अब्बास इसकी तफसीर में कहते हैं खाइनतुल आयुन का मतलब ये है कि जब कोई लड़का किसी के घर जाए, वहां उसने एक लड़की देखी है, जो ही उसका बाप इधर उधर देखता है वो लड़का चोरी छुपे लड़की की तरफ देखने की कोशिश करता है, और जो ही उसका बाप इसकी तरफ देखता है तो फौरन नजरें हटा लेता है, उस नजर को भी अल्लाह ने देख लिया, अल्लाह ताला ने नोट कर लिया। अब देखें इब्ने अब्बास ने तो वो मिसाल दी कि जो उस वक्त की थी, आज तो कंप्यूटर है फोन है ये चीजें, उनके ऊपर क्या देख रहे हैं क्या आ रहा है, कोई आता है तो फौरन चेंज हो जाता है सारा सीन, वो स्क्रीन बंद कर दी जाती है। इस चीज को अल्लाह देख रहा है, कोई गलत देख रहा है। देखिए इब्ने अब्बास ने कितनी प्यारी ये बात इस तरह से एक्सप्लेन की है कि कोई कुछ गलत चीज देख रहा है ना, इतने में हवा चलती है और दरवाजे की जो कुवाड़ है वो खुल जाती है, वो समझता है कोई आ गया है तो एकदम डर जाता है कि अब बस मैं पकड़ा गया कोई आ गया। फरमाया है ये उस बंदे का घबरा जाना, खौफ जदा हो जाना कि कोई आ गया है ना, ये उससे भी बड़ा गुनाह है जो वो कर रहा था। इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कोई कंप्यूटर पे मसलन बैठा, तो अब वो कुछ गलत चीजें देख रहा है उसमें, या किसी से फोन पे बात कर रहा है जिससे उसको बात नहीं करनी, इतने में एकदम दरवाजे की आवाज आती है। जो ही दरवाजे की आवाज आती है उसकी जान निकल जाती है कि बस अब मेरे पेरेंट्स में से कोई आ गया, या बस मैं पकड़ा गया, या हालांकि वहां पे कोई भी नहीं होता। अब ये जो जान निकल गई ना उसकी, ये सोच के कि कोई आ गया है, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है उससे जो वो कर रहा था, जो वो चीज देख रहा था, या जिसे वो गलत बात कर रहा था। क्यों? इसलिए कि इसने उस आने वाले शख्स को ज्यादा बड़ा बना दिया अल्लाह से। इसको उसका खौफ ज्यादा है और अल्लाह का खौफ नहीं है, जो सारा वक्त ही इसको देख रहा है, जब से वो बैठा, जब से वो बात कर रहा है, या जब से वो सीन देख रहा है, अल्लाह की नजरों में अल्लाह अर-रकीब है। तो वो एक इंसान से डर गया, अल्लाह से नहीं डरता। एक इंसान के सामने अपनी इज्जत का उसको ख्याल आया कि ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अल्लाह के सामने इज्जत जाने का ख्याल नहीं आया। इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यालमुल्लाह, तुम छुपाओ जो तुम्हारे सीनों में, या जाहिर करो, अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाह ताला को पता है कि जो नजर उठी और वो नजर जब वापिस आई है, तो वो क्या ख्याल है जो दिल में पैदा हुआ उससे, किसी ने मसलन किसी पर गलत नजर डाल दी। अब वो नजर एक ख्याल लेकर आती है, किसी को कोई कोई खूबसूरत लगा, किसी और लड़की को कोई हैंडसम लगा, अब वो जो नजर ने देखा और फिर वो जो ख्याल लेकर आई वो नजर, उस ख्याल को भी अल्लाह जानता है। मिसाल के तौर पे इसी तरह एक और मिसाल सोचे कि कोई खातून है, वो ऐसे तैसे हुलिये के अंदर कहीं जाती है और उसको परवाह भी नहीं होती, मगर एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी कुरान की टीचर वहां आ रही है, तो अब वो अच्छे से हिजाब लेकर जा रही है, स्कार्फ लेके जा रही है, ये कर रही है। किसका डर है? कौन पकड़ लेगा? वो टीचर? तो अल्लाह ताला का डर नहीं? उसके सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं, इस चीज का खौफ है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं इस चीज से डरती हूं, लेकिन अल्लाह क्या सोचेगा मेरे बारे में, उससे नहीं डरती। सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अगर वो सब चीजें जो हमारी नजरें देखती हैं, या वो सब ख्यालात, या वो सब सोचें जो हमारे अंदर उठती हैं, वो सब एक जगह पे टाइप हो जाएं, एक कागज पे, हमने किसके बारे में क्या सोचा, वो हमें बुरी लगती, हमारे दिल में आया कि आश मारी जाए तो अच्छा है, खत्म हो जाए मेरी जान छूटे, कोई मर्द आगे से गुजरा तो आए काश ये मेरा शौहर होता, उसके ऊपर उस तरह के जज्बात आए, ये सारे जो ख्यालात आए ना अंदर, वो सब सोचे टाइप हो जाए कागज पे, जैसे जैसे सोचते जाए हम वैसे वैसे टाइप होते जाए। तो कभी बताएं ऐसा कर सकेंगे हम कि हम उस कागज को लोगों को दिखा सकें जिसमें हमारा हर ख्याल टाइप हुआ हुआ? अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कागज सबको नजर आएगा, तो ऐसे ख्यालात रखने से पहले हम हजार दफा सोचें, कांप जाएं ऐसे ख्यालात लाने से पहले, लेकिन इसलिए कि लोगों ने देखना, सोचे अल्लाह ताला की जात हमारे हर ख्याल को पढ़ रहा है, वो हमारे हर एहसास को वो जानता है, हमारी हर सोच पे उसका पहरा है, पहरा बैठा हुआ है। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि हम जो मर्जी सोचते रहें, जो मर्जी ख्यालों ही ख्यालों में बातें प्लॉट बनाते रहें, या ख्वाब देखते रहें, या जो भी गलत सलत दिमाग के अंदर चीजें आ रही हैं उनको एंटरटेन करते रहें और बस उसी के अंदर खोए रहें, और किसी को कुछ पता थोड़ी चल रहा है वो मेरे दिमाग में, कौन मेरे दिमाग तक पहुंच सकता है, किसी के भी नहीं रीच। कोई कह नहीं सकता ये तुम क्या गलत बात सोच रही हो, जब तक हम जुबान से ना बोले कोई पकड़ नहीं सकता उसके ऊपर हमें। लेकिन हम ये भूल जाते ना, एक अर्रकीब है, वो मेरे ख्यालात की निगरानी कर रहा है, मेरे ब्रेन तक कोई और नहीं पहुंच सकता मगर अल्लाह पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। फिर उसने अपनी निगरानी के अलावा अपने फरिश्तों को भी रकीब बनाया है कि उसके फरिश्ते भी निगरानी करते हैं। उसके फरिश्ते उनकी निगरानी के बारे में सूरह कौफ में आता है ना, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद। इंसान कोई लफ्ज जुबान से निकाल नहीं पाता मगर एक निगरान मुकर्रर होता है, हर वक्त तैयार, हर वक्त तैयार। हजरत हसन बसरी इन आयात की तिलावत करते थे तो गफलत में डूबे हुए लोगों को यूं झंझोड़ते थे, ऐ इब्ने आदम तेरे नामा अमाल भी छा दिया गया और दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए, एक जाएं तरफ एक बाएं तरफ। दाएं तरफ वाला तेरी नेकियां लिखता है, बाएं तरफ वाला तेरे गुनाह लिखता है। अब तू जो चाहे अमल कर और जिस चाहे अमल को ज्यादा कर, जिसको चाहे कम कर। यहां तक कि जब तू मरेगा तो ये तेरा नामा अमाल लपेट दिया जाएगा और तेरी गर्दन में डाल दिया जाएगा और साथ ही तेरे कब्र में रख दिया जाएगा। फिर कयामत के दिन अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, इकरा किताब, पढ़ अपनी किताब, कफा भी नफसी कल यौमा अलैका हसीबा, आए तू अपना हिसाब लेने के लिए खुद काफी है। तो अगर इस बात को इंसान सोचे ना तो उसके चलते हुए गलत कदम खुद ही रुक जाएंगे, उसकी बोलती भी बेलगाम जुबान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। जिन उंगलियों से वो टाइप करता है ना, जल्दी जल्दी टेक्स्ट करता है, ये उंगलियां चलेंगी नहीं। फिर अगर ये एहसास हो कि अर्रकीब मुझे देख रहा है, मैं उसकी नजरों में हूं, अर्रकीब मुझे जानता है, तो ये सोचना जरूरी है कि अल्लाह ताला निगेबान है, मेरी बातों को सुन रहा है, मेरे हर अमल का इल्म उसको है, हर लम्हा हर सांस और ये इवन हर आंख का झपकना इसके ऊपर भी उसकी निगेबानी है। मुझे तो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, एक एक नेमत का सोचे, एक एक नेमत का। अल्लाह ताला सब पे रकीब है, अल्लाह ताला सब को जानने वाला है। अल्लाह ने मुझे कपड़े दिए, मैं बेलिबास था, अल्लाह ने खाना दिया, मैं भूखा था, अल्लाह ने ताकत दी, मैं कमजोर था, मैं अकेला था, अल्लाह ने शादी करा दी, माल दिया। तो वो निगेबान है, वो मेरी सारी जरूरियात की भी निगेबानी करता है। अल्लाह हू अकबर। तो लिहाजा फिर मैं उसकी नाफरमानी करने से बचूं, और उसकी निगेबानी ना सिर्फ इंसान पे है बल्कि सारी मखलूकात पे है। आप देखें ना, ये जो कायनात चल रही है इसके अंदर जितने सितारे सैयारे सब चल रहे हैं, इन पे वो निगेबानी कर रहा है, वरना तो ये एक दूसरे से टकरा के कहीं खत्म हो चुके होते आज तक। जरा सा भी एक इंच भी इधर से उधर हो जाए तो सब निजाम दरहम बरहम हो जाए। लेकिन इसका मतलब कोई अर्रकीब है जो पल पल की खबर रखता है कि ये निजाम सही चल रहा है या नहीं, उसकी निगरानी कर रहा है, उसको वॉच करता है। वो अर्रकीब जो सितारों सैयारों के ऊपर निगेबानी करने वाला है, वही मुझ पे और आप पे भी निगेबानी करने वाला है। एक वाकया इसमें आपको सुनाती हूँ, आपको पता चलेगा कि जब इंसान इस नाम के साथ जीता है ना तो उसकी जिंदगी कैसी होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के गुलाम नाफे का बयान है कि एक दफा अब्दुल्ला बिन उमर मदीना के किसी किनारे की तरफ निकले, आपके साथ चंद साथी भी थे, साथियों ने आपके खाने के लिए दस्तरखान बिछाया। इसी दौरान वहां से एक चरवाहा गुजरा, जब बड़ा सख्त गर्म दिन था, बहुत सख्त गर्मी थी, तो वो इस गर्मी में बकरियां चरा रहा था। इब्ने उमर ने इससे कहा, चरवाहे आओ इस दस्तरखान से तुम भी कुछ खा पी लो। उसने कहा, इन्नी सौइम, मैं रोजे से हूं। तो इब्ने उमर ने फरमाया, इतने सख्त दिन पे तुमने रोजा रखा हुआ है, तुम इतने रोजे की मुशक्कत बर्दाश्त कर रहे हो, लू इंतहा तेज है और तुमने बकरियां चरानी है और तुम रोजा रखे हुए बैठे हो। तो चरवाहे ने जवाब दिया, जी मैं इन खाली दिनों की तैयारी कर रहा जिनमें अमल का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए दुनिया की जिंदगी में अमल कर रहा हूं। ये मैंने यानी वहां जाना है जहां पे फिर अमल का मौका नहीं होगा, वो खाली दिन हो गए होंगे, तो मैं उन दिनों की तैयारी कर रहा हूं। अब आप देखिए ये वाली बात इतनी जबरदस्त है, और मुझे आज सारा दिन ये बात याद आती रही, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इंसान थक जाता है, या उसको नींद आ रही होती है, या वो सोचता है कि अच्छा चलो थोड़ा लाइट ले लेती हूँ। लेकिन देखिए इस चरवाहे की बात में कितनी हिकमत है कि मैं उन दिनों की तैयारी कर रहा हूँ जहाँ पे अमल का मौका नहीं होगा, इसलिए मैं यहीं पे अमल कर रहा हूँ। कितनी दफ़ा हम इतने रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि हम बस कहते हैं कोई कहे अगर हमें कि चलो कुछ नफल पढ़ लो, चलो कुछ कुरान पढ़ लो, नहीं अल्लाह को पता है ना, अल्लाह को पता है मैं कितनी थकी हुई हूँ, अल्लाह ताला को पता है कि मेरी कितनी मजबूरी है, अल्लाह ताला को पता है कि मैं कितना कम आज सोई हूँ और मुझे कितनी नींद आ रही है, अल्लाह को सारा पता है। अच्छा चलो ठीक है, अब यानी हमारे पास एक एक्सक्यूज़ है, अल्लाह को पता है लिहाजा रिलैक्स करो अब। तो अब यहाँ पे देखें उस चरवाहे ने क्या जवाब दिया, उसने ये नहीं सोचा कि गर्मी तो इतनी है, अल्लाह को पता ही है ना गर्मी इतनी है, अल्लाह को पता ही कि मेरी कितनी टफ जॉब है, मैंने बकरियां चरानी है तो मैं क्यों रोजा रखूं, नहीं ये दिन इसलिए कि ये दोबारा नहीं आने, इनमें मेहनत कर लो उन दिनों के लिए जिन दिनों में कोई अमल नहीं कर सकेगा। कितनी जबरदस्त बात है। तो अब्दुल्ला बिन उमर बड़े मतलब उसके तकवे से और उसके खौफे खुदा से बड़े वो इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने सोचा कि इसका इम्तिहान लेता हूँ, तो उसको कहा कि तुम इस रेवड़ में से एक बकरी बेच सकते हो, हम तुम्हें उसकी नकद कीमत देते हैं और तुम्हारे इफ्तार के लिए गोश्त भी देंगे। चरवाहे ने जवाब दिया, ये बकरियाँ मेरी तो नहीं है जो बेच दूँ, ये तो मेरे मालिक की है, जाहिर वो गुलाम था, तो मैं तो इसमें कोई चीज़ को भी मतलब बेच खरीद तो नहीं सकता। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, उसका इम्तिहान ले रहे हैं ना, तो फरमाया तो तुम्हारा आका अगर कोई बकरी गुम पाए तो तुम उसे कह देना कि वो बकरी गुम हो गई, वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रेवड़ में से एक दो बकरियां पहाड़ों में गुम हो ही जाती हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई नई बात थोड़ी ना। ये सुनना था कि चरवाहा अब्दुल्ला बिन उमर के पास से चल दिया और अपनी उंगली आसमान की तरफ उठा के बार बार एक जुमला कहने लगा, अल्लाहु अकबर, फ़ऐन अल्लाह, फ़ऐन अल्लाह, फ़ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, यानी अगर मैं ये कर लूँ तो फिर अल्लाह कहाँ है, फिर तो मैंने अल्लाह ताला को बुला ही दिया, इग्नोर ही कर दिया, वो तो देख रहा है ना कि बकरी गुम नहीं हुई, मैंने बेच दी, फ़ऐन अल्लाह। वो जब चरवाहा चला गया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसका ये जुमला बार बार दोहराते जाए, फ़ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है। जब मदीना आए वापस तो वो चरवाहे के मालिक के पास उन्होंने अपने आदमी भेजे, उससे बकरियां भी और चरवाहे को भी खरीद के आजाद कर दिया, बकरियां भी उसको तोहफे में दे दी। और फिर अब्दुल्ला बिन उमर फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि एक बात ने तुझे दुनिया में आज़ादी दिला दी, कौन सी बात थी, फ़ऐन अल्लाह, तो उस दिन भी वो तुझे आजादी दे दे जिस दिन तेरी उससे मुलाकात हो। सुभान अल्लाह, ये होता है अर-रकीब, ये इस नाम के साथ जिंदगी गुजारना, वो तो मेरी निगरानी कर रहा है ना, तेरा अल्लाह कहाँ हुआ अगर मैं ये काम करूं तो। ये तो हर वक्त ही याद आना चाहिए, कुछ जो इस नाम के तहत जिंदगी गुजारेगा ना फिर बोलने लगेगा तो उसको याद आएगा कि अल्लाह अर-रकीब, वो मेरी निगरानी कर रहा है, वो मेरे बोल से वाकिफ है, दिल में ख्याल आने लगेगा गलत तो फिर भी आएगा, इंसान एकदम चौंक जाएगा, नहीं वो अर-रकीब मेरे दिल की बातों को जानता है, कोई चीज गलत देखने लगेगा तब भी ये ख्याल आ जाएगा कि वो अर-रकीब तो मुझे देख रहा है, वो खयानत, आंखों की खयानत को भी जान लेता है, जो साथ बैठा बंदा है उसको नहीं पता। अब एक बंदा है वो आप दोनों जा रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड ही, आपके हस्बैंड किधर देख रहे हैं, आप तो नहीं जान सकती ना, अरे साथ साथ आप दोनों चल रहे होते हैं, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, उनकी नजरें किधर गई आपको नहीं पता, क्या चीज उन्होंने सोची उस चीज को देख के आपको नहीं पता, आप साथ बैठे हैं लेकिन नहीं जान सकते। तो इंसान रकीब नहीं हो सकता, अल्लाह ताला ही है जो निगरानी करने वाला है। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज लोग कयामत के दिन तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। और तहामा पहाड़ ना बहुत बुलंद पहाड़ था, बहुत ऊंचा पहाड़, और वो नेकियां हबा मंसूरा बन जाएंगी, यानी मतलब मुंतशिर गुबार उड़ा उड़ा हुआ जा रहा है, जैसे डस्ट है उड़ती है ना, इस तरह वो पूरे को पूरा नेकियों का पहाड़ ऐसे उड़ जाएगा भक से बिल्कुल। तो सहाबा तो कांप गए, यार उसे लव कौन लोग होंगे जिनकी इतनी नेकियां और ऐसे उड़ जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो और तलब है हमारे लिए। आपने फरमाया वो तुम्हारे जैसे ही लोग होंगे, यानी सहाबा की तरह, मगर वो जब लोगों में होते थे तो वो नेक होते थे, लेकिन जब वो तन्हा होते थे तो हदें पार कर देते थे, यानी उन तन्हाई के अंदर वो गुनाह करते थे। वो सोचते थे ना कोई देख नहीं रहा तो कौन पकड़ेगा, यहाँ कहाँ कोई बदनामी थोड़ी होगी, किसी को क्या पता। लेकिन जो इस नाम को समझ ले अर रकीब, वो फिर ये नहीं सोच सकता। आप देखते हैं ना जिनको अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं होता, फिर कैसे अगर कहीं किसी जगह पे लाइट चली जाए, कंप्यूटर के सिस्टम खराब हो जाए, ये सब खराब हो जाते, देखा कैसे वो शॉप्स लूटने शुरू हो जाते हैं, स्टोरों के शीशे तोड़ के अंदर से जाके चोरियां कर लेते हैं। पहले किस चीज ने उनको रोका हुआ था कि कैमरा देख रहा है, और जब वो कैमरे बंद हो गए, बिजली चली गई, तो फिर देखे कितनी लूट मार हो जाती है ऐसी जगहों पे। तो इससे पता चलता है कि जब अर रकीब का ख्याल दिल में ना हो ना कि अल्लाह अर रकीब है, तो फिर ये होता है। और जब ऐसा ख्याल हो तो ये तो कोई पुराने जमाने की बात नहीं है, अब की बात है कि एक नौजवान था, वो एलिवेटर में जा रहा था, अब उसके साथ एक बहुत ही हसीन एक लड़की भी एलिवेटर में थी। वो उसने लड़की की तरफ देखा भी नहीं, वो एलिवेटर क्या ऐसा हुआ कि वो बीच में जाके रुक गया, लाइट चली गई। और अब ये मौका ऐसा था कि वो मर्द चाहता तो कुछ भी करता, अब तो कैमरा भी बंद हो गया, कुछ भी यहाँ पे करेगा तो वो लड़की किसी को क्या बता सकेगी। लेकिन उसने उससे मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। जब वो दोनों फिर एलिवेटर से निकले, जब ठीक हो गया वो, तो उस लड़की को बड़ी हैरानगी हुई कि ऐसा मौका कोई नौजवान हाथ से जाने दे, ये कैसे हो सकता है। उसने उसे पूछा कि तुम क्या गे हो, उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं इतनी इस तरह के लिबास में और ऐसी खूबसूरत, और तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो उसने एक बात कही, उसने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं और मैं अर रकीब पे ईमान रखता हूं, वो जो दिलों के ख्यालात को भी जानता है, जो नजरों के उठने को जानता है, तो मैं तुम्हारी तरफ गलत नजर नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं जहन्नुम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका एक अंगारा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो लड़की इतनी इम्प्रेस हुई, उसने उसको कहा कि मैं तुम्हारे से शादी करना चाहती हूँ। तो वो उसने उससे शादी कर ली, और वो लड़की वो पता नहीं कितनी बड़ी बिजनेस एम्पायर की मालिक थी, तो वो कहाँ से कहाँ वो नौजवान पहुंच गया। लेकिन कहने की बात यह है कि देखिए, इंसान जब इस एहसास के साथ जीता है ना, तो हर जगह फिर उसको ये होता है कि ये करूंगा ना तो अल्लाह तो मुझे देख रहा है, वो तो मेरी निगेवानी कर रहा है, क्या मैं उसकी सजा को सह सकूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला इस अल्लाह ताला के नाम और रकीब जल्ला जलालहू के ऊपर हमने गौर करना है, इसको याद रखना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इसके मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकें। आपको पता है कि जैसे कि आजकल हमारी जो रातें चल रही हैं, इनमें जो हमने दुआ करनी है वो तो आखिरी अशरे की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी है, मगर हमारे पास मौका है कि हम नई नई दुआएं भी सीखें। और एक दुआ बहुत ज़रूरी है जो आजकल हमें करनी चाहिए, वो है बीमारियों से बचाव की दुआ। ऐसी दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई भी है, और वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। किस चीज़ से? मिनल बरसी, ए अल्लाह बर से, ये जैसे होता है ना फुलबेरी की बीमारी, बरस के निशान पड़ने लगते, उससे मिनल बरसी वल जुनूनी, और जुनून से यानी पागलपन से। इंसान कभी कभी दिमाग ही खराब हो जाता है, अच्छा भला सारे जिस्म ठीक है लेकिन दिमाग के ऊपर ऐसा असर हो जाता है, दिमाग अपने काबू में नहीं रहता। वल जुजामी, और कोढ़ कोढ़ की बीमारी लेप्रसी से। व मिन सईल असकाम, और अल्लाह तमाम बुरी बीमारियों से, सारी बुरी बीमारियां आ गई चाहे वो कोई भी बीमारी है। इसी तरह जो आज का जिक्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट जिक्र इस लिहाज से है कि जब आप ये कलिमात कहेंगे तो दुआ कबूल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ये कहते हुए सुना तो आपने फरमाया इसने अल्लाह ताला की इस्मे आज़म से सवाल किया, यानी इस्मे आज़म के ज़रिए सवाल किया, और इस नाम के साथ जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, और जब सवाल किया जाए तो अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो दुआ से पहले इसका मतलब हम ये जिक्र जरूर कर लिया करें, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ है, और वैसे भी दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ करनी चाहिए, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ, और फिर अपनी दुआ कहनी चाहिए। तो अब जिक्र क्या है? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, ए अल्लाह सारी हम्द तेरे लिए है। ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। वहदा का, तू अकेला है। ला शरीक अलग, तेरा कोई शरीक नहीं है। अलमन्नानु, एहसान करने वाला। बदी असमावाति वल अर्द, नए सिरे से पैदा करने वाला आसमान और जमीन को। या जुल जलाली वल इकराम, ए जुल जलाली इज्जत वाले और जलाल वाले। तो इस जिक्र के साथ इंशाल्लाह हम अपनी दुआएं करेंगे। और एक चीज़ ना भूलिएगा, और वो है सदका करना। चाहे $1 का सदका करें इन रातों में, ज़रूर करें, क्योंकि हदीस में आता है सदका कब्र वालों से गर्मी को ख़त्म करता है। यानी हमने आज सदका किया होगा ना तो कब्र की गर्मी से हम बच सकते हैं, और कयामत के दिन मोमिन अपने सदके के साए तले होगा, यानी ये सदका साइबान बन जाएगा। समझ लें कि आप यहाँ पे अपने लिए छतरी खरीद रहे हैं उस दिन की हीट से बचने के लिए जिस दिन कोई साया नहीं होगा और सूरज बहुत करीब होगा, उस दिन कोई और छतरी नहीं चलेगी, लेकिन सदका आपके लिए साइबान बन जाएगा। कब्र में जहाँ पे कोई एसी नहीं होगा, कोई पंखा नहीं होगा, कितनी घुटन होगी, कितनी गर्मी होगी, वहां की गर्मी को खत्म कर देता है सदका। तो अपने लिए सदका करना है, आपने किसी के लिए नहीं करना, अपने लिए। ये अपने लिए हुआ ना, हम अपने साथ भलाई कर रहे हैं ना। तो ये इंशा अल्लाह ताला हम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की निगेवानी फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए हर फितने और हर शर और हर बीमारी से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अजला अता फरमाए। बहुत सारे लोग दुआ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामला अजला दे। जो फौत हो गए हैं अल्लाह ताला उनको, इनके दर्जात को बुलंद करे, उनकी बख्शिश फरमा दे। जो इस बीमारी से दुनिया से गए हैं अल्लाह ताला उनको शुहदा के दर्जात अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, हमें बख्श दे, हमारे क़याम और सियाम को कबूल फरमा ले, इन रातों में बेहतरीन इबादत हमसे करा ले, हमें इखलास नियत अल्लाह ताला अता फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।